ब्रेन वॉश। फिलहाल ये समस्या केवल आहान और रौनक के ही नहीं बल्कि बाकी तीनों कपल्स के भी थी। अब आगे वहीं रश्मि भी शान नजरों से आकाश को देखते हुए बोली, मैं और आकाश भी अब एक कमरे में नहीं रह सकते क्योंकि अरमान को तो यही पता है कि हम में से किसी की भी कोई शादी नहीं हुई है, इसीलिए हम सब कपल्स को अलग अलग रहना होगा। वहीं आहान तुरंत नाराजगी जताते हुए बोला, लेकिन अरमान भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो हमने मान लिया कि वो अपनी बीवी को भूल गए, लेकिन इस चक्कर में क्या हमें भी अपनी बीवी से दूर रहना होगा? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब जैसे ही आहान ने बेचैन आवाज में ये कहा, वैसे ही ध्रुव ने उसकी पेट थपथपाकर सुझाव दिया, अब मेरी बात ध्यान से सुन, हमें अरमान भाई के सोने उठने जागने हर चीज की टाइमिंग पता है। हाँ, ये बात अलग है कि आस्था भाभी की उनकी जिंदगी में आने के बाद उनकी काफी टाइमिंग चेंज हो गई है और काफी कुछ बदल गया है, लेकिन हमें उनके 2 साल पहले का टाइम शेड्यूल अच्छी तरह से पता है, इसीलिए हम लोग अपने अपने कमरे में ही रहेंगे, लेकिन सब कुछ हमें टाइम से परफेक्टली करना होगा। अरमान भाई के सोकर उठने से पहले पहल हमें अलग अलग कमरों में जाना होगा, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अब जैसे ही ध्रुव ने सबको अपने शब्दों में कुछ आइडिया समझाया और ये बताया कि किस तरह से अरमान के सामने उन्हें रिएक्ट करना है और कैसे अपनी शादीशुदा लाइफ बैलेंस करनी है, तो ये सुनकर सबने राहत की सांस ली थी। कहीं ना कहीं ये सुनकर आहान का दिल खुशी से झूम उठा। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को साफ किया और ध्रुव को गले लगाकर चीखा, यार मुझे ना पहले तुझ पर थोड़ा बहुत शक होता था कि तू मेरा सच्चा दोस्त है भी या नहीं, लेकिन आज इतनी बड़ी मुसीबत से निकालकर तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरा पक्का वाला दोस्त है, थैंक यू यार, थैंक यू। वहीं आकाश और सुमित ने भी खुश होकर बारी बारी से ध्रुव की पीठ थपथपाई थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा था क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वे अपने मुंह से ध्रुव की तारीफ कर दें। अब ध्रुव की बातें सुनकर रौनक ने इंटरेस्टेड होकर सवाल किया, अगर आप लोगों को पता ही है कि इस वक्त अरमान भाई क्या कर रहे होंगे तो हमें भी बताओ ना कुछ। ये सुनकर ध्रुव तपाक से हंसते हुए बोला, एज यूजुअल इस वक्त अरमान भाई जिम रूम में होंगे और जिम कर रहे होंगे। ये सुनकर सब लड़कियां चौंक गईं और फट से बोली, लेकिन इतनी दोपहर को जिम कौन करता है? तब ध्रुव और आहान एक साथ गर्व से बोले, इस टाइम हमारे अरमान भाई जिम करते हैं। अब दोनों को एक साथ बोलते हुए देखकर सभी मुस्कुरा दिए थे, लेकिन ठीक उसी वक्त नानी माँ का फोन बजने लगा। अब नानी माँ का फोन बजते ही सबका ध्यान नानी माँ के फोन की तरफ आकर्षित हो गया था और सब लोगों की आंखें हैरत से फैल चुकी थीं। साथ ही साथ उन्हें टेंशन भी होने लगी थी कि आखिरकार किसका फोन आ सकता है और कौन इस तरह से फोन कर सकता है। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था का वीडियो कॉल देखा तो वो एकदम से हैरान हो गई थी और सबकी ओर बेचैन नजरों से देखकर बोली, गोरी बिटिया का फोन है, अब हम गोरी बिटिया को क्या जवाब देंगे? तब रश्मि नानी माँ जल्दी से बोली, नानी माँ पहले तो आप शांत हो जाइए और अपना फोन उठाइए, अगर आप फोन नहीं उठाएंगे तो आस्था परेशान हो सकती है, और याद रखिएगा नानी माँ हमें आस्था को कुछ नहीं बताना है क्योंकि उसकी ट्रिप बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। अब नानी माँ ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान दबाए फटाफट से वीडियो कॉल ऑन कर दिया। दूसरी तरफ आस्था अंश को गोद में लिए हुए बैठी थी और नानी माँ को देखकर एक्साइटेड होते हुए बोली, नानी माँ कैसी हैं आप? पता है हम आपको बहुत याद कर रहे हैं और हमारा अंश भी। आस्था की बात सुनकर नानी माँ ने हल्की स्माइल करते हुए जवाब दिया, बिटिया हम तो ठीक और हम सब भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम बताओ तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है? नानी माँ की बातों का जवाब देते हुए आस्था बोली, नानी माँ हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है, आपको पता है कल हम शॉपिंग करने के लिए संडे मार्केट भी जाने वाले हैं। अब ये सुनकर नानी माँ चौंक गई और हैरानी जताते हुए बोली, अरे बिटिया वहाँ पर भी संडे बाजार लगता है क्या, जैसे हमारे यहाँ सड़कों पर लगता है? उनकी बात सुनते ही आस्था अगले ही पल हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं वहाँ बाजार नहीं लगता नानी माँ, बल्कि वहाँ किसी खुले मैदान में बाजार लगता है, और आपको पता है मैं एंजल भाभी के साथ वहाँ के बाजार में जाने वाली हूँ। तब आहान ध्रुव के कानों में धीमी आवाज में फुसफुसाया, यार ये अविनाश भैया वैसे तो इतने अमीर हैं, फिर भी ये भाभी को इस तरह से संडे बाजार में शॉपिंग करने के लिए भेजना चाहते हैं, क्या वो अपने पैसे बचाना चाहते हैं? इतना सुनते ही ध्रुव ने उसे आंखें दिखाकर कुछ न कहने का इशारा किया, लेकिन तभी रौनक एक्साइटेड होते हुए वीडियो कॉल पर आस्था को देखकर जल्दी से बोली, आस्था वहाँ पर किस तरह का बाजार लगता है और वहाँ से हमारे लिए भी शॉपिंग करना ठीक है? अब उन दोनों को आपस में बोलते हुए देखकर नानी माँ ने फोन रौनक को पकड़ा दिया। अब रौनक ने अपनी कितनी सारी चीजें खासकर खाने पीने की चीजें आस्था को बताना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर आस्था हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हम तुम्हारे लिए भी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग के नाम से राधिका और वंशिका के भी कान खड़े हो गए और वे भी अब फोन में झांकते हुए बोली, हमारे लिए भी ऑस्ट्रेलिया से कुछ न कुछ खरीदना ठीक है, और हाँ राधिका को झुमके पहनने का बहुत शौक है, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के झुमके कैसे होंगे। अब तो सभी बारी बारी से अपनी अपनी शॉपिंग लिस्ट के बारे में आस्था को बताने लगती हैं। वहीं आस्था उनकी लिस्ट सुनकर मुस्कुराई जा रही थी और वो काफी खुश भी हो रही थी। वहीं ध्रुव आहान सुमित साथ ही साथ आकाश मुंह खोले उन लड़कियों को हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। रौनक राधिका और वंशिका तीनों मिलकर आस्था को अपनी शॉपिंग लिस्ट गिनवाने लगी थी कि हमें वहां से ये चाहिए और वो चाहिए। अब ये सिचुएशन देखकर आहान तो खुद को रोक नहीं पाया और एकदम से चिढ़कर बोला, देखा आप लोगों ने भाई, ये है यहाँ की भारतीय नारी। अभी थोड़ी देर पहले तो कैसे सेंटी हो रही थी, किस तरह से दुख जता रही थी, लेकिन जैसे ही शॉपिंग का नाम आया, देखो किस तरह से इन्होंने अपनी गैंग बना लिया और आस्था भाभी को पूरी की पूरी शॉपिंग लिस्ट भी समझा दी। तभी रश्मि तुरंत ही उन तीनों को टोकते हुए फोन लेकर आस्था से बोली, आस्था अगर तुम इनसे बात करती रही तो पूरा का पूरा एक एरोप्लेन इनकी शॉपिंग से ही भर जाएगा, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो अपनी पसंद से खरीद लेना, ठीक है। आस्था ने हाँ में सिर हिलाया, फिर एकदम बोली, अच्छा रश्मि दीदी, अरमान जी कहाँ है? ये मिस्टर खड़ू सिंघानिया कहाँ है? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, आकाश भैया और सुमित भैया ही हर बार उनके फोन पर रिप्लाई कर रहे हैं। ये सुनकर रश्मि ने तिरछी नजरों से आकाश की ओर चुपके से देखा। रश्मि उसे समझाते हुए जल्दी से बोल पड़ी, अरे हाँ वो मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ, अरमान तो इस वक्त शायद सो रहा होगा, जब से तुम गई हो उसका किसी भी काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, उसने अपनी हालत काफी अजीब सी कर ली है, तुम तो जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन अविनाश जी को और तुम्हारे दादाजी को वो दुख में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हें वहाँ भेजा है। फिलहाल तो तुम्हारे पास 8 से 10 दिन है, तो तुम अरमान से बात नहीं करो तो ही अच्छा है, वरना उसे तुम्हारी और ज्यादा याद सताने लगेगी। जैसे ही रश्मि ने थोड़ा सा चालाकी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह उसे फुसलाया तो ये सुनकर आस्था थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई, क्योंकि अरमान से बात किए बिना वो कैसे रह सकती थी, पहली बार वो अरमान से इतनी दूर हुई थी तो उसे उसकी कमी का पूरी तरह से एहसास हो रहा था। तभी नानीमा रश्मि की बात का इशारा समझते हुए फोन लेकर आस्था को फुसलाने लगी,
हाँ गोरी बिटिया, रश्मि बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम जानती हो दामाद जी तुम्हें कितना ज्यादा याद करते हैं, वो बस इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रहे ताकि तुम कुछ समय अपनी दादाजी के साथ अच्छे से बिता लो बिटिया, और फिर तो तुम्हें यहीं आना है, फिर तुम सब कुछ संभाल लेना। जैसे ही नानीमा ने अरमान से बात करने से मना किया वैसे ही आस्था का चेहरा एक पल के लिए ठहर गया, लेकिन आस्था को कहीं ना कहीं नानीमा की बातें पूरी तरह से ठीक लग रही थीं और वो फिर से बोल पड़ी, हाँ हाँ नानीमा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वैसे भी जब से हम यहाँ आए हैं अरमान जी ने 2 बार ही हमें कॉल किया है, वो काफ़ी उदास लग रहे थे और उनकी आवाज़ में हमें मायूसी महसूस हो रही थी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा फ़ोन नहीं करेंगे और ना ही उन्हें परेशान करेंगे, अगर उन्हें हमारी ज़्यादा याद आएगी तो वो फिर हमें लेने यहाँ आ जाएंगे, वैसे भी हम यहाँ पर दादाजी अविनाश भैया और एंजल भाभी के साथ काफ़ी खुश हैं और हम अब 15 दिन उनके साथ गुजार कर ही आएंगे, और हमारे यहाँ आने से दादाजी भी काफ़ी खुश हैं, अविनाश भैया ने बताया कि उनकी सेहत में भी काफ़ी सुधार हो रहा है, अब वैसे भी हमें आप सबके लिए भी तो ढेर सारी शॉपिंग करनी है, तो इसलिए अब हम अरमान जी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे वरना वो अगले ही दिन हमें लेने आ जाएंगे, लेकिन नानी माँ आप तो जानती हैं कि उन्हें देखे बगैर मेरा दिल नहीं मानता है, तो क्या आप अपने फ़ोन से वीडियो कॉल करके सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उन्हें हमें दिखा देंगी? जैसे ही आस्था ने अपने दिल की बात जाहिर की वैसे ही नानी माँ एकदम से मुस्कुराई और उससे बोली, अरे हाँ हाँ बिटिया क्यों नहीं, हम तुम्हें चोरी चुपके जैसे भी दामाद जी हमारे सामने आया करेंगे चुपके से तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखा दिया करेंगे, ठीक है, और तब तक तुम दामाद जी से बात मत करना, ठीक है। अरमान का नाम सुनकर आस्था के दिल में कुतकुती सी महसूस होने लगी, एक पल के लिए उसने अरमान के बारे में सोचा, उसकी मजबूत बाहों को महसूस करते हुए उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जैसे वो इस वक्त अरमान के चौड़े सीने से लगी हुई हो, उसकी फ्रेग्रेंस को अपने अंदर समेट रही हो। फिलहाल नानी माँ की आवाज़ से आस्था जल्द ही अपनी हसीन ख्वाब से बाहर आई। नानी माँ ने उसे झिझकते हुए कहा, बिटिया हमें अभी थोड़ा काम है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है, और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें दामाद जी की वीडियो बनाकर जल्द ही भेज देंगे। ये बोलकर नानी माँ ने जल्दीबाजी में फ़ोन काट दिया था। फ़ोन काटने के बाद नानी माँ कुछ पल के लिए मायूस सी हो गई और परेशान होकर बोली, हमें गोरी बिटिया से झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमने पहली बार अपनी बिटिया को इस तरह से झूठ बोला है। तभी रश्मि ने नानी माँ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन दिया, अगर किसी की खुशी के लिए थोड़ा सा झूठ बोला जाए नानी माँ तो वो झूठ सच से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इतना बोलकर रश्मि ने नानी माँ को गले से लगा लिया था। उसी पल रौनक राधिका और वंशिका भी आकर नानीमा और रश्मि के गले से लग गई थीं। ये दृश्य देखकर सभी लड़के एक दूसरे की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराने दिए, लेकिन ठीक उसी वक्त उन्हें एकदम से कुछ याद आया और देर ना करते हुए सब दौड़कर सीधा अरमान के स्टडी रूम में जमा हो गए थे, क्योंकि दोपहर में जिम करने के बाद अरमान सीधे स्टडी रूम में उनसे मिला करता था और सब लोग वहां हुआ करते थे। टाइगर और मारिया पहले से ही स्टडी रूम में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर अब अरमान जिम करने के तुरंत बाद जैसे ही फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आया तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि उसके कमरे की थीम पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। घर के सभी लोगों ने मिलकर आस्था की निशानियां वहां से हटा दी थीं, लेकिन कमरे का कलर और टेक्सचर जो कि आस्था के अकॉर्डिंग था इतनी जल्दी भला वो उसे कैसे चेंज कर सकते थे। इतना ही नहीं, जब अरमान ने बेटी ख्वाहिश की थी तब उसने बेटी के चक्कर में पूरा रूम ही पिंक कलर से पेंट करवा दिया था, लेकिन बाद में आस्था ने उसे ठीक पहले जैसा नॉर्मल पेंट करवा दिया था। लेकिन अब अपने कमरे को यूं देखकर अरमान थोड़ा सा भौचक्का सा रह गया। फिर उसने सोचा शायद उसने अपनी याददाश्त जाने से पहले ये सब चेंजेस किए होंगे और उसके सर पर वार होने की वजह से वो अपनी कुछ यादें भूल गया है, जैसे वो बूढ़ी औरत और उसके साथ उसकी तीनों बेटियों को भी भूल गया है। तो कहीं ना कहीं अरमान ने गहरी सांस ली। नहाने के बाद एक बार फिर उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, वो क्या याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाह के भी कुछ याद नहीं कर पाया। फिलहाल ज्यादा ना सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही शावर लिया और फटाफट से तैयार होकर स्टडी रूम में आ धमका।